हरिशरणम्। परम श्रद्धे प्रातस्मरणीय महाबहाव रस वारिधि निमग्न श्री राधा बाबा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्री गीता वाटिका के पवित्र परिसर में श्री गिरिराज जी की भावमयी तलहटी में पूज्य श्रद्धेय संतों की पावन सन्निधि में हम आप सबको श्री नाभा गोस्वामी जी की समाधि वाणी श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से कलिपावनावतार भक्तमाल ग्रंथ के सुमेरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरित्र के कथन श्रवण का अवसर सुलभ हो रहा है। हम लोग गोस्वामी जी के पावन चरित्र का भी श्रवण कर रहे हैं और श्री रास बिहारी ठाकुर जी भी गोस्वामी जी की अनुपम कृति श्रीमद् रामचरित मानस के माध्यम से अपनी मंगलमयी लीला का दर्शन भी करा रहे हैं। कल के लीला प्रसंग में हम लोगों ने देवर्षि श्री नारद जी के लोक मंगलकारी चरित्र का दर्शन किया। हम पुनः एक बात निवेदन कर दें, कल भी हमने कहा था भगवान के अवतार का जो प्रयोजन है वही भक्त के अवतार का प्रयोजन है। आप लोग कहेंगे भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है? बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं, आप सबको ज्ञात है, स्वयं भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्ला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक श्रीमद् भगवद गीता जी, अर्थ भी आप सबको स्पष्ट है। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का उत्थान होता है, अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब तब भगवान इस जीव जगत पर महान अनुग्रह करने के लिए अपने आप को इस धरती पर प्रकट करते हैं। प्रकट होकर भगवान संतों का परित्राण करते हैं, भक्त जनों का, प्रपन्न जनों का परित्राण करते हैं। प्राण माने रक्षा और परि उपसर्ग और लगा दिया, परित्राण। प्रह्लाद की रक्षा भगवान ने किया, ये त्राण है। प्रह्लाद की रक्षा अनेक संकटों से भगवान ने की, ये त्राण है। और परि उपसर्ग लग गया तो बन गया परित्राण। परित्राण शब्द का अर्थ क्या है? श्री रामानुजाचार्य जी ने गीता भाष्य में परित्राण शब्द में परि का अर्थ लिखा है। वे कहते हैं केवल दुष्टों से अपने आश्रित भक्तों की रक्षा करना, दुर्जनों के अत्याचार से अपने प्रपन्न शरणागत भक्तों को बचाना, यह तो त्राण है। और परित्राण क्या है? बोले सवरी की कोटि की जो भक्ता हैं, जो श्री राम दर्शन के लिए व्याकुल हृदय से प्रतीक्षा कर रही हैं, अपलक नेत्रों से बाट जो रही हैं, ऐसे प्रेमी भक्तों को दर्शन देकर कृतार्थ करना, ये परित्राण है। क्योंकि उनके प्राण छटपटा रहे हैं, दर्श बिन दुखन लागे नैन, तो उनका प्राण कैसे होगा? दुष्टों की कोई पीड़ा संकट तो उनको है नहीं, तो उनका परित्राण कैसे होगा? बोले दर्शन स्पर्श और संलाप के द्वारा उनकी विरहजन्य पीड़ा को दूर करना ये प्रेमियों का परित्राण है। धर्म की स्थापना के लिए भगवान प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं, ये भगवान की वाणी है। अब भगवान के प्यारे भक्त उनके अवतार का प्रयोजन क्या है? ठीक यही उनके अवतार का प्रयोजन है। और भगवान के अवतार प्रयोजन से कुछ विशिष्ट, आप लोग कहेंगे कुछ विशिष्ट, अरे भाई यदि विशिष्ट हम नहीं मानेंगे नहीं कहेंगे तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, अधिकत्व कैसे सिद्ध होगा? राम से अधिक सिद्ध करने के लिए इस अर्थ को विशिष्ट कहना ही पड़ेगा। और हम कोई खींचतान का अर्थ नहीं कर रहे हैं, आप श्रवण करें और अनुभव करें। जितने भक्तों का अवतरण हुआ है, आचार्य कोटि के महापुरुषों का अवतरण हुआ है, वह भी काल धर्म की ग्लानि का काल था, अधर्म की वृद्धि का काल था। और उस भीषण काल में भगवद आज्ञा से प्रेषित भगवान के नित्य मुक्त सिद्ध भक्तों ने अवतार ग्रहण किया, वे धरती पर पधारे और आकर उन्होंने क्या किया? साधुओं का परित्राण किया। अब ये परित्राण क्या है? भक्त किस प्रकार का परित्राण करते हैं? बोले ये संत भक्त आचार्य इस धराधाम पर प्रकट न होते तो जीवों को ज्ञान भक्ति वैराग्य का उपदेश कौन करता? वैष्णवाचार का उपदेश अपनी विलक्षण दिव्यचर्या के द्वारा कौन करता? इसलिए वस्तुतः यह संत भक्त आचार्य प्रकट होकर के धर्म का परित्राण करते हैं, भक्तों का परित्राण करते हैं, संतों का परित्राण करते हैं। आप अनुभव करें, आज जो कुछ श्री राम भक्ति भगवत भक्ति सनातन धर्म की स्थिति समाज में यत्र तत्र यत किंचित भी दिखाई पड़ रही है, उसके मूल में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का योगदान है। संपूर्ण वेदादि शास्त्रों का अत्यंत गंभीर गुह्यतम गूढ़तम सिद्धांत भाषा ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत कर दिया। सनातन धर्म के सर्वांगीण स्वरूप को जानने के लिए रामचरितमानस अपने आप में पर्याप्त है। धर्म की इतनी सहज सरल सुंदर व्याख्या और कोई दूसरी नहीं हो सकती। यही है वस्तुतः परित्राण। भगवान अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करते हैं और भगवान के प्यारे भक्त अवतार लेकर दुष्टों का विनाश नहीं करते, दुष्टों के भीतर जो दुष्टता है उसका विनाश कर देते हैं। दुष्टों को भी सज्जन बना देते हैं, साधु पुरुष बना देते हैं। कितने ऐसे जीव हैं जो श्री रामचरित मानस का आश्रय लेकर के परम साधु हो गए, असाधु भी साधु हो गए, और जो केवल वेश से साधु थे वे साधुता में परिपूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गए। जिनका केवल वेश ही साधु का था, अंतःकरण साधु के जैसा नहीं था, वे भी गोस्वामी जी के चरित्र का उनकी वाणी का आश्रय लेकर साधु हुआ। न जाने कितनों की विमुखता दूर चली गई। आपको आश्चर्य होगा, हमें अनेकों साधक ऐसे मिले जिन्होंने ये कहा कि हम तो कुछ नहीं जानते थे, केवल रामचरितमानस के माध्यम से हमारा संसार छूट गया। कल हम चर्चा कर रहे थे, सायंकाल की बात है, कुछ लोग बैठे थे, एक संत का हम स्मरण कर रहे थे, श्री राधे श्याम बाबा, आप थे उस समय के, आप नहीं थे। राधे श्याम बाबा का कल हम स्मरण कर रहे थे, दूसरे किसी प्रसंग में स्मरण कर रहे थे। उनका जन्म राजस्थान का भरतपुर जिले का जन्म था, गौड़विप्र परिवार में उनका जन्म था और सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के महात्मा थे। बचपन में ही उनको श्री रामचरितमानस की पोथी प्राप्त हुई। हनुमान जी का मंदिर था, वहां वे रामचरितमानस को हिंदी अर्थ वाली आती है चौपाई दोहा पर हिंदी अर्थ, उस समय में तो प्रतियां दुर्लभ जैसी ही थी जिस काल की ये बात है, वो हनुमान जी को बांच बांच के सुनाने लगी। और रामचरितमानस की केवल एक आवृत्ति पढ़ते ही संसार से भोगों से पूर्ण वैराग्य हो गया और श्री राम नाम में उनका अनुराग हो गया और मन ही मन उन्होंने गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया और अब निश्चय किया कि हमको इन्हीं हनुमान जी को 108 मानस जी के पाठ सुनाना है, हनुमान जी का दर्शन हो और गुरु महाराज प्रत्यक्ष दर्शन दें। तुलसीदास जी उनके प्रति गुरु भाव था। 108 श्री रामचरितमानस के हनुमान जी को प्रेम पूर्वक पारायण सुनाए, पाठ सुनाए। पाठ की समाप्ति पर पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का दर्शन हुआ, प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और गोस्वामी जी ने कहा कि तुम्हारे भाव को हम स्वीकार करते हैं किंतु प्रकट मर्यादा की रक्षा के लिए किसी संत का विधिवत गुरु रूप में वर्ण करो, हमने तुम्हारे भाव को अंगीकार कर लिया है पर मेरी आज्ञा है कहीं से विधिवत विरक्त वेश प्राप्त करो। तो फिर गोस्वामी जी का जहां से संकेत था उन संत से उन्होंने विधिवत विरक्त वेश भी आगे चलकर प्राप्त किया। गोस्वामी जी तो अभीष्ट की पूर्ति का वर देकर अंतर्धान हो गए और उसके बाद श्री हनुमान जी प्रकट हुए, ये सत्य घटनाएं महाराज। ये केवल हम ये निवेदन कर रहे हैं कि एक सामान्य से गांव में जन्म लेने वाला एक बालक जिसने पहले न कभी साधु दर्शन किया, न कभी कथा वार्ता सुनी, न कहीं किसी तीर्थ में गया, केवल रामचरितमानस की पोथी के माध्यम से कितनी उपलब्धि हुई ये बता रहे हैं आपको। 108वां पाठ चल रहा था उस समय गोस्वामी जी का दर्शन हुआ और जब पाठ की पूर्णता हुई तो श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। बोले हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ मांग लो। बोले हमको जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को आपने चित्रकूट में श्री सीताराम जी का दर्शन कराया था ऐसे ही हमको चित्रकूट में सीताराम जी का दर्शन करा देना, यही हमारी इच्छा है। हनुमान जी बड़े राजी भए, प्रसन्न भए और उन्होंने अपनी दक्षिण भुजा फैला दी, बोले इस पर बैठ जाओ और दक्षिण भुजा पर बैठा करके हनुमान जी की, हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, उसी क्षण उनको अनुभव हुआ कि हम हनुमान जी की भुजा पर बैठे, चित्रकूट आ गए। एक क्षण में भरतपुर जिले से वे गांव में थे, छोटा सा गांव झाड़करी, उस गांव के में हनुमान जी का मंदिर जंगल में, वहां भजन करते थे, उनको अनुभव हुआ कि हम तो कामतानाथ की परिक्रमा में खड़े, हनुमान जी कहते भुजा से उतर जाओ, ये उस सीताराम जी का दर्शन करो। प्रत्यक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन कराया। इसके बाद पुनः वे झाड़करी जंगल में आ गए और फिर वे नाम जप करने लगे, तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को उन्होंने 1 अरब की संख्या में जपा। कितना? एक बार में 16 नाम, ऐसे नहीं, ऐसी गिनती नहीं गिनी उन्होंने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 1 माने 108 108 बार जपा माने 1 माला हुई, 16 का गुणा करके नहीं। इस हिसाब से उन्होंने 1 अरब नाम जपा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 1। इस प्रमाण से 1 अरब नाम जपा और उस नाम जप की संख्या पूर्ण करने में उन्हें 56 वर्ष लगे। कितने? बचपन से ही भजन में लग गए थे। अनुभव तो इतने हुए कि उन्होंने अपने अनुभवों का प्रकाश ही नहीं किया। ये जो हम चर्चा सुना रहे हैं ये खुद वे स्वयं लिख करके गए। इतने बोले क्योंकि गिरिराज जी में, ब्रजवासियों में उनके प्रति बड़ी भारी श्रद्धा थी, तो उन्होंने कहा कहीं हमारे बारे में भ्रामक प्रचार न हो जाए। लोगों की श्रद्धा भावना से अनेक अनुभूतियां होती हैं, इसलिए भगवान नाम और रामचरित मानस का प्रभाव क्या है इसको हम स्वयं ही संकेत में लिख करके जा रहे हैं। ये उन्होंने अपने अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा है। 1 दोना छाछ और इतना सा गुड़, 50 ग्राम 100 ग्राम गुड़, ये खाकर के उन्होंने 56 वर्ष में ये संख्या पूर्ण की। आज भी उस क्षेत्र में जहां उन्होंने जप किया है उस क्षेत्र में आज भी ओला नहीं गिरता, महामारी नहीं फैलती। आज भी बाबा बड़े सिद्ध थे। एक बार कदम खंडी में आए, एक कदम वृक्ष के नीचे बैठ करके भजन कर रहे थे। बोले यहां ठाकुर जी के लिए 2 दोना आ गए थे, तो ये कदम का पत्ता तो बड़ा नहीं होता, 2 दोना कैसे होंगे। दृष्टि ऊपर उठाई तो उस पर जितने पत्ता थे सब 2 दोना ही 2 दोना थे, और 1-1 दोना इतना बड़ा जिसमें 3 पाव से लेकर 1.25 शेर तक दही आ जाए। माने वे संकल्प करते थे उनको लीलाओं का दर्शन होता था, विचार करते लीलाओं का। ये नाम की महिमा। एक बार उनके चित्त में महारास दर्शन की व्याकुलता हुई और वे वहां से चल करके राजस्थान झाड़करी से चल करके वे वृंदावन में सेवा कुंज आए। एक ब्राह्मण देवता और थे, वो मास्टर थे वो भी, और ये रात में छिप करके सेवा कुंज में प्रवेश किए इस भाव से कि यहां सुनते हैं भगवान का नित्य रास होता है तो हमको नित्य रास महारास का दर्शन होगा। इस भाव से दोनों छिप गए। उनमें से जो मास्टर जी थे उनको तो उठाकर किसी अज्ञात शक्ति ने सेवा कुंज के जो मुख्य द्वार है ना जहां से घुसते हैं वहां किसी ने पटक दिया, फेंक दिया, और बाबा एक झाड़ी में छिप करके बैठे रहे। वे परम अधिकारी थे, उन्हें महारास का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उन्होंने स्वयं लिखा है। दिव्य वाद्य बज रहे हैं, मणिमयी भूमि है और अनंत सहचरी के मध्य श्री जी हैं, ठाकुर जी हैं, महारास हो रहा है और महारास के मध्य श्री जी नृत्य करते हुए बाबा के निकट पधारी, ये सत्य घटना है। और बाबा के शीश पे अपना करकमल रखा श्री जी ने, और शीश मस्तक पर करकमल रखकर कहा बाबा अब तू राधे श्याम है जा, तेने राधे श्याम के दर्शन कर लिए, बाबा अब तू राधे श्याम है जा। बाबा का नाम था सीताराम दास जी, डाकोरिया रामानंदी साधु थे, चीला जी के द्वारे के साधु थे। और श्री जी ने क्या कहा, बाबा अब तू राधे श्याम है जा, और कछु चाहे, बोले बस ये लीला देखते ही रहूं, बोले बस यही हो तो रहे हो, तू जब चाहेगो तब ते मेरी लीला को अनुभव कर सकेगो। श्री जी अंतर्धान हो गई, वे परमानंद में छके हुए प्रातः काल जब आए तो पटवारी जी, क्या नाम उनका, मास्टर जी, मास्टर जी ने उनसे पूछा, मास्टर जी ने पूछा कि कहो बाबा आपको कुछ दिखा। बड़े सरल महात्मा थे, महात्माओं में छिपाव दुराव नहीं होता। उन्होंने कहा हाँ, श्री जी ने तो हमको आशीर्वाद देकर कहा कि बाबा अब तू राधे श्याम है जा, अब मैं राधे श्याम बाबा है गए हूं। यह सुनते ही मास्टर जी बोले, ये साधु लोग बहुत झूठ बोलते हैं, झूठी मान बढ़ाई पाने की कामना से बहुत झूठ बोलते हैं, बता इतना बड़ा झूठ, हमको तो कुछ नहीं दिखा, डर और लगा, किसी ने उठा के फेंक दिया हमको बाहर और तुमको दर्शन हो गए। बाबा कुछ बोले नहीं, पर इस वाक्य के कहने के बाद मास्टर जी के पेट में इतनी असह्य पीड़ा शुरू हो गई, उधर सूल शुरू हो गया कि किसी उपचार से रोग दूर न हो, अंत में वे मूर्छा में चले गए। उसमें बाबा ने कहा, भगवत अनुभूति पर अविश्वास करने का ये दुष्परिणाम है, अब तो ये बच नहीं सकते। अंत में बहुत आर्त भाव से श्री जी से प्रार्थना किया, तब उनकी प्राण रक्षा हुई। बाद में बाबा गिरिराज जी में निवास किया, अंतिम क्षण तक बाबा ने गिरिराज जी में ही निवास किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज ने भी राधे श्याम बाबा का उनकी अति वृद्धावस्था में दर्शन प्राप्त किया। बहुत अच्छे समझते, परम विरक्त महात्मा, परम विरक्त। और स्वामी जी विचित्र बात है, अब सीताराम दास जी तो उनका नाम हमें मालूम है तो हमने बता दिया, अब आज भी पूरे उस जहां क्षेत्र में बाबा का प्रभाव है और ब्रज में सब जगह राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। बाबा ने कोई प्रचार नहीं किया, पर श्री जी ने कहा बाबा अब तू राधे श्याम है जा, पूरे ब्रज में राधे श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो। हरिशरणम हम निवेदन कर रहे हैं, यह है गोस्वामी जी की वाणी का प्रभाव। संपूर्ण रामचरित मानस नहीं, रामचरित मानस की एक एक चौपाई, एक एक पंक्ति भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली। हमारे वृंदावन में एक संत थे, हमने उनका दर्शन किया है, पूज्य पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी महाराज, पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी चतुर्वेदी, मोटे गणेश जी वाले महाराज के नाम से वे संतों में प्रसिद्ध थे। मोटे गणेश जी एक मंदिर है, आपने दर्शन किया हो तो, मोटे गणेश जी मंदिर पे भी निवास करते थे, वहां जहां उनका मकान था उनके मकान के हिस्से में ही मोटे गणेश जी का मंदिर था, इसलिए लोग उनको मोटे गणेश महाराज कहते थे। नाम उनका पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी था। उनका जन्म भी राजस्थान चौमू का था, चौमू, चौमू है ना जयपुर के पास, चौमू का जन्म था। वशिष्ठ गोत्रीय ब्राह्मण थे और उस अंग्रेजी शासन में वे रेलवे के बड़े अधिकारी हो गए थे। सहज ही एक दिन विचार हुआ, भगवान ने हमें मनुष्य क्यों बनाया, मनुष्य शरीर का क्या फल है, मनुष्य में भी विप्र कुल में जन्म हुआ है, इस ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का क्या फल है, सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर मिला, केवल भगवत प्राप्ति। और केवल एक घंटे के चिंतन में ही वे पूर्ण विरक्त हो गए, उन्होंने इस्तीफा लिख दिया और अपना घर द्वार छोड़ करके वे वृंदावन आ गए। उनकी धर्म पत्नी भी उनके साथ आ गई। और हम तो अपने अपनी भावना अभिव्यक्त कर रहे हैं, हमको उन दोनों दिव्य दंपति का दर्शन करके ऐसा लगता था मानो इस युग के वशिष्ठ अरुंधति का हम दर्शन कर रहे हैं। पंडित जी और माता जी का दर्शन करके लगता था कि हम इस युग के वशिष्ठ और अरुंधति जी का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण का अपने नेत्रों से कई बार प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया था। पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज उनको अत्यधिक आदर देते थे। उड़िया बाबा का नाम तो सुना, श्री पूर्णानंद तीर्थ उड़िया बाबा, इतना आदर देते थे। हमने यहां तक सुना है प्रामाणिक लोगों से कि कई बार वे बाबा के पास सत्संग करने जाते तो उड़िया बाबा प्रायः ध्यानावस्था में रहते थे। जब वे जागृत अवस्था में होते, ध्यान से अलग अवस्था में होते और देखते कि पंडित जी आ रहे हैं तो उठकर खड़े हो जाते। एक दिन महाराज ने कहा अब हम आपके चरणों में आने में संकोच करेंगे, अब वहीं से आपका स्मरण कर लें। क्यों? बोले मैं गृहस्थ हूं, आप चतुर्थाश्रमी यति हैं, गृहस्थ व्यक्ति के आने पर विरक्त साधु संत उठकर के खड़ा हो गए तो उससे गृहस्थ की हानि होती है, हम तो गृहस्थ हैं, आप ऐसा न किया करें। उड़िया बाबा बोले ज्ञेयस्य नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, वह नित्य सन्यासी है जो कभी किसी से द्वेष नहीं करता और कभी किसी से कुछ चाहता नहीं। नित्य सन्यासी के लक्षण आप में घटित होते हैं, इसलिए मैं आपका गृहस्थ मानकर नहीं आपको नित्य सन्यासी मानकर आदर करता हूं। और ज्यादा आपको संकोच है तो लो हमारा कमंडल, अब हो गए तुम साधु। तो बाबा ने अपना जो सन्यासी वाला कमंडल होता ना, दरियाई कमंडल, वो कमंडल उठा करके दे दिया। आज भी वो कमंडल हमारे यहां एक संत हैं उनके पास रखा हुआ है। मोटे गणेश जी वाले महाराज ने उन संत को दिया, उड़िया बाबा का कमंडल आज भी रखा है। अच्छे महापुरुष थे, कई उनके जीवन के विचित्र विलक्षण घटनाएं हैं। दास के ऊपर बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा थी। हमारे महाराज जी ने भी उनको एक महीने में भक्तमाल जी की कथा सुनाई थी। जब मोटे गणेश जी रहते थे महाराज जी ने एक महीना तक उनको भक्तमाल जी की कथा सुनाई थी। सिद्ध पुरुष थे। एक बार उन्होंने भरत व्रत किया। आप लोग कहेंगे व्रत कहां लिखा मिलता है, कहीं लिखा हुआ नहीं, रामचरित मानस का नित्य पाठ करते थे वे महापुरुष। और उन्होंने रामचरित मानस के पाठ से ही भरत व्रत की प्रेरणा प्राप्त की कि भरत जी 14 वर्ष जिन नियमों का पालन करके रहे, हम भी 14 वर्ष उन्हीं नियमों का पालन करके रहेंगे, मानस जी का पाठ करेंगे, शेष समय नाम जप करेंगे। वे नित्य ठीक 3 बजे रात को यमुना जी में स्नान करते और बिहारी जी की नित्य शयन आरती का दर्शन करते और बाकी समय अपने साधन में लगे रहते। गाय को जौ खिलाकर उसके गोबर में से जौ बीन लेती थी उनकी धर्मपत्नी, उन जौ को दांत से चबाकर खा लेते थे और यमुना जी का जल पी लेते थे, शाम को थोड़ा गोदुग्ध लेते थे। इस प्रकार से उन्होंने 14 वर्ष व्यतीत किए। भरत व्रत की पूर्णता का समय था और वे मानस जी का पाठ कर रहे थे। यह घटना उनके स्वयं मुखारविंद से हमने सुनी है। तो उसी समय दर्शन की व्याकुलता रहा एक दिन अवध यधारा वाली व्याकुलता उनके चित्त में थी, भरत भाव जागृत हो चुका था। तो पाठ करते करते दर्शन की अतिशय व्याकुलता बढ़ी और तब तक सरकार का वाक्य आ गया,
दिव्य धाम मम पुरी सुहावन, दिव्य धाम मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू पावन, उत्तर जन से भी नहीं दिया, जन से भी नहीं दिया, जन से भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावै वासा,
मम समीप पावै वासा।
अरे बोले इतना सरल साधन, केवल अयोध्या जी चले जाओ और सरयू जी में गोता लगाओ और सरकार का सामिप्य प्राप्त हो जाए, फिर तो खूब सेवा करेंगे, फिर क्या है। पाठ तो इस चौपाई का अनेकों बार कर चुके थे, पर आज इस चौपाई को पढ़कर ऐसा भाव जागृत हुआ कि वे कह रहे थे कि हम एक वस्त्र में बैठे थे, हमें यह होश नहीं है कि हम कैसे अयोध्या जी पहुंच गए, ट्रेन से गए कि पैदल गए कि आकाश मार्ग से गए कि हमारी व्याकुलता ने वहीं हमको प्रकट कर दिया। बोले अब तक हमारी बुद्धि में नहीं आया, कैसे हुआ, क्या हुआ। हम अनुभव कर रहे हैं कि हम सरयू जी के तट पर खड़े हैं, श्री अयोध्या जी में, और जैसे ही सरयू जी को साष्टांग करके दंडवत प्रणाम करके सरयू जी में गोता लगाया और अब व्याकुल होकर बाहर निकले कि देखें लिखा तो ऐसे ही है, मम जा मज्जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। देखें जैसे ही गोता लगा के बाहर निकले तो क्या देखते हैं, चारों लाल जी श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों लाल जी श्री सरयू जी के जल में विहार कर रहे, खेल रहे हैं, और बहुत देर तक ठाकुर जी ने उनको साथ लेकर जल क्रीड़ा की। और एक विशेष बात बतावें, बोले अब तुम सख्य भाव में प्रतिष्ठित हो जाओ, क्यों, बोले तुम्हारा श्री कृष्ण के प्रति सख्य भाव है इसलिए तुम हमारे भी सखाओ, रामकृष्ण एक ही तो है, तो ठाकुर जी के प्रति पहले दास्य भाव था फिर सख्य भाव, इसके बाद देखते हैं तो फिर बैठकर मानस जी का पाठ कर रहे हैं। तो ये घटना सुनाकर उन महापुरुष ने कहा, बाबा मानस जी की एक एक चौपाई युगल सरकार का दर्शन कराने वाले, चारों लाल जी का दर्शन कराने वाले। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं है, सैकड़ों घटनाएं महापुरुषों के जीवन में है। गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, श्री राम मंगलदास जी महाराज, वे एक बार वशिष्ठ कुंड पर विराजमान थे, उन्होंने देखा एक वृद्ध से महात्मा आए, बिना पढ़े लिखे थे, गोदड़ी उड़े हुए थे, और उन्होंने वशिष्ठ कुंड में स्नान किया, स्नान करके गोदड़ी में जेव बना रखे थे उन्होंने, उसी में से मानस जी का एक गुटका निकाला, गीता प्रेस का, और गुटका निकाल करके एक पन्नी से गुड़ निकाला, तो ठाकुर जी को प्रार्थना किया तो रामचरितमानस के गुटका से सीताराम जी प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी हथेली पर गुड़ थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर हाथ से भोग लगाया और कमंडल के पानी से भगवान को आचमन करा दिया, मुंह पोछ दिया भगवान को। फिर बोले आपने पा लिया तो अब आप पधारो, ठाकुर जी फिर उसी पोथी में विराजमान हो। तो परमहंसी महाराज ने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा तो उन्होंने उन संत से पूछा, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, ये कौन सी पोथी है जिससे भगवान का दर्शन हुआ? बोले ये रामचरितमानस है। तो आप बहुत पाठ करते होंगे? कहते नहीं, हम तो बिना पढ़े लिखे, हम तो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं, केवल सीताराम सीताराम जपते हैं। तो फिर ये कैसे भगवान का दर्शन हो गया आपको? बोले हमारे गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा ये रामायण है, इसमें राम जी रहते हैं, जब जरूरत पड़े तब बुला लिया करो, हमको पोथी दे दिया और अब और तो कुछ सांस रख नहीं सकते। जब गुरु जी ने कहा कि भोग लगा के खाया करो, रोज भोग लगा देता हूं गुड़ का, विश्वास की बात, श्रद्धा की बात। न जाने कितने जीवों को भगवत सम्मुख किया,